लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस अपनी वार्षिक रमजान एकजुटता यात्रा के सिलसिले में बांग्लादेश पहुंचे। उन्होंने देश की अंतरिम सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करने के अलावा कॉक्स बाजार में रोहिंग्या शरणार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मानवीय सहायता में गंभीर कटौती के बीच शरणार्थी आबादी के लिए खाद्य व अन्य राहत सामग्री की किल्लत टालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों ने शरण ली है, जो 2017 में पड़ोसी देश म्यांमार में सुरक्षा बलों के क्रूर हमलों से बचकर वहां पहुंचे थे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
यूएन प्रमुख ने कॉक्सिस बाजार पहुंचने के बाद वहां रोहिंग्या शरणार्थियों से उनकी कठिनाइयों, उनके कठोर अनुभवों के बारे में बात की। यहां एक विशाल शरणार्थी बस्ती में म्यांमार से सुरक्षा की तलाश में आए लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों ने शरण ली है। महासचिव गुटेरेस ने कहा कि वो रोहिंग्या लोगों की व्यथा को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और उनमें निहित संभावनाओं को भी। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस कह रहे थे कि वो रमदान के पवित्र महीने के दौरान एकजुटता व्यक्त करने के इरादे से कॉक्सिस बाजार पहुंचे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों और उनके उदार मेजबान बांग्लादेशी समुदाय के साथ एकजुटता। यूएन प्रमुख ने बताया कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने शरणार्थियों से दो संदेश सुने, सुरक्षित हालात में म्यांमार वापस लौटने की इच्छा और यहां शिविरों में रहन सहन की बेहतर परिस्थितियों की जरूरत। उन्होंने आगाह किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य यूरोपीय देशों द्वारा सहायता धनराशि में कटौती किए जाने की घोषणाओं से मानवीय सहायता अभियान पर असर पड़ने और खाद्य सहायता में कटौती होने की आशंका है। यूएन प्रमुख ने भरोसा दिलाया कि इसे टालने के लिए हर संभव कोशिश और उन सभी देशों से बातचीत की जाएगी जो अपना समर्थन दे सकते हैं, ताकि सहायता धनराशि का प्रबंध हो सके। उन्होंने कहा कि ये शरणार्थी अपने घर जाना चाहते हैं, म्यांमार उनकी भूमि है और इस संकट का प्राथमिक समाधान स्वैच्छिक रूप से एक सुरक्षित और गरिमामय माहौल में उनकी घर वापसी है। यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा रोहिंग्या संकट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो विश्व नेताओं से रोहिंग्या आबादी के लिए समर्थन बढ़ाने की अपील करेंगे।
इसराइल के कब्जे वाले काबिज फिलिस्तीनी इलाके के लिए नियुक्त वरिष्ठ मानवाधिकार जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इजरायली बलों ने फिलिस्तीनियों के विरुद्ध यौन एवं लिंग आधारित हिंसा को युद्ध के एक औजार के रूप में अंजाम दिया है। जांचकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी बंदियों का जबरन निर्वस्त्र किया जाना, बलात्कार की धमकियों के अलावा उनका यौन उत्पीड़न करना व यौन हमलों को अंजाम देना इसराइली सेना के कामकाज की एक मानक प्रक्रिया थी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है पूजा यादव।
आयोग के जांचकर्ताओं ने कहा है कि यौन एवं लिंग आधारित हिंसा जननांगों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं के लिए इसराइल के शीर्ष सैन्य व सिविल नेतृत्व की तरफ से या तो स्पष्ट आदेश थे या फिर इस तरह के कृत्यों को इशारतन प्रोत्साहन दिया गया। पुरुषों व लड़कों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नग्न किया गया और फिर उसी अवस्था में सर्दी में जमीन पर 3 दिन तक बिठाया गया। काबिज फलस्तीनी इलाके के लिए जांच आयोग के आयुक्त क्रिस सिडोटी ने जिनेवा में कहा,
Our report finds that Israel has increasingly employed sexual reproductive and other forms of gender-based violence against Palestinians.
हमारी रिपोर्ट में पाया गया है कि इसराइल ने फिलिस्तीनी जन के आत्मनिर्णय के अधिकार को कमजोर करने के प्रयासों के तहत यौन व प्रजनन समेत लिंग आधारित हिंसा के अन्य रूपों को फिलिस्तीनी आबादी के विरुद्ध इस्तेमाल किया है, जिनमें बच्चे भी हैं। काबिज फिलिस्तीनी इलाके में यौन और लिंग आधारित हिंसा को जिस बारंबारता, व्यापकता और गंभीरता से अंजाम दिया गया है, उससे ये आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इसराइल यौन व लिंग आधारित हिंसा को युद्ध के एक तौर तरीके के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसका मकसद फिलिस्तीनी आबादी को अस्थिर बनाना, उसे बर्बाद करना और वहां अपना दबदबा कायम करना है।
काबिज फलस्तीनी क्षेत्र के लिए जांच आयोग के आयुक्त क्रिस सिडोटी के शब्द। उन्होंने बताया कि आयोग ने कहा है कि अक्टूबर 2023 के बाद घटित ऐसी घटनाओं के लिए इसराइली सुरक्षा बलों या इसराइली बस्तियों के बाशिंदों की जवाबदेही तय करने पर केंद्रित किसी प्रक्रिया के बारे में इसराइल की तरफ से कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि संगठन के आधुनिकीकरण और अपने कामकाज को कारगर, किफायती और जरूरतमंदों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के इरादे से सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन प्रयासों के तहत संगठन की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर UNAT नामक पहल पेश की गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
शीर्षतम यूएन अधिकारी ने बुधवार को न्यूयॉर्क मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सुधार केवल आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में नहीं है, बल्कि शांति, विकास व मानवीय सहायता के क्षेत्र में ठोस बेहतरी लाने पर भी लक्षित हैं। अंतोनियो गुटेरेश ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की इतनी बड़ी जरूरत पहले कभी नहीं रही, हमारे मूल्य इतने प्रासंगिक कभी नहीं रहे और आवश्यकताएं इतनी विशाल कभी नहीं रही, मगर संसाधन हर जगह बड़े पैमाने पर कम हो रहे हैं और काफी लंबे समय से। संयुक्त राष्ट्र पिछले 7 वर्षों से नकदी के संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि सभी देश अपनी देनदारी की पूरी धनराशि का भुगतान नहीं करते हैं और बहुत से देश समय पर धनराशि अदा नहीं करते हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि यूएन 80 पहल के तहत प्रयासों में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि सार्वजनिक निधि का बुद्धिमत्तापूर्वक और पारदर्शी ढंग से उपयोग किया जाए।
महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वीमेन का 69वां सत्र न्यूयॉर्क में 10 से 21 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। यह महिलाओं के मुद्दे पर केंद्रित विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। संयुक्त राष्ट्र ने महिला अधिकारों को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को हासिल करने के इरादे से एक नया कार्यवाही एजेंडा प्रस्तुत किया है। भारत की महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है, जब भी महिलाओं को अवसर और संसाधन मिले हैं, उन्होंने हर बाधा पार करके सफलता प्राप्त की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
भारत की महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा,
इतिहास साक्षी है कि दुनिया भर में जब कभी भी महिलाओं को अवसर और संसाधन मिले हैं, वे सभी वर्जनाओं एवं बाधाओं को तोड़ती हुई आगे बढ़ी हैं। सरकारों और समाज के अथक प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। इससे यह भी पता चलता है कि उन्हें कोई बाधा नहीं रोक सकती, जरूरत सिर्फ अवसर प्रदान करने की है, सक्षम इकोसिस्टम बनाने और माइंडसेट्स में बदलाव करने की है।
भारत की महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के शब्द। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज की तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में स्टेम क्षेत्रों, खेलों, नवाचार और अनुसंधान क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम स्थित येसु को समर्पित महागिरजाघर में गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य लाभ हेतु आयोजित ख्रीस्त्याग समारोह के अवसर पर प्रवचन करते हुए वेटिकन के विदेश मंत्री महाधर्माधीश पॉल गालाघार ने कहा कि संत पापा कमजोरी में भी कलीसिया और मानवता की सेवा कर रहे हैं। महाधर्माधीश गालाघार ने कहा कि संत पापा उनके प्रति निकटता और प्रार्थनाओं के लिए संपूर्ण विश्व के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा वे उस निकटता और प्रार्थनाओं के लिए आभारी हैं जो विशेष रूप से इन हाल के दिनों में उनके लिए, उनकी सार्वभौमिक प्रेरिताई के लिए और उनके स्वास्थ्य की बहाली के लिए स्वर्ग से प्रचुर मात्रा में आ रही है। महाधर्माध्यक्ष ने इस अवसर पर युद्धरत देशों में बढ़ती बुराई के खतरे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक ऐसी कूटनीति की आवश्यकता है जो दयनीय मानवीय हितों से अलग हो तथा सामान्य भलाई के पक्ष में हो। चालीसा काल के दौरान विश्व के समक्ष युद्धों के कारण प्रस्तुत चुनौतियों के लिए सबसे प्रार्थना का आग्रह कर उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रेम है तथा प्रार्थना द्वारा यह प्रेम प्रवाहित होता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर का प्रेम पाने का अर्थ है आध्यात्मिक पुनर्जन्म प्राप्त करना, जो आशा, स्वतंत्रता और शांति के नए स्थान और नए क्षितिज खोलता है। उन्होंने स्मरण दिलाया कि हमारे दिनों में भी बुराई का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और कभी कभी अंधकार प्रकाश पर हावी होता प्रतीत होता है, जिसे हम यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान, म्यांमार, सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और संघर्ष के अन्य स्थानों में जारी युद्धों में दुखद रूप से देख रहे हैं। युद्ध के विपरीत आध्यात्मिक पुनर्जन्म साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाता है, उन्होंने कहा। हालांकि बाधाओं की कमी नहीं है। कुछ लोग दुर्भाग्यवश घृणा, दुर्व्यवहार और हर स्तर पर युद्ध के विकृत तर्क को अपनाते हुए लगातार मौत की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जिसके चलते दुनिया जातीय समूहों और सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों के टकराव का दृश्य बन जाती है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा हमें एक उच्चतर प्रकाश की आवश्यकता है जो हमें हमारे निर्णयों में मार्गदर्शन दे और उन्हें आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करे, और ऐसा वास्तव में प्रार्थना द्वारा ही हो सकता है। प्रार्थना, उन्होंने कहा, मौन और अंतर आत्मा की आवाज सुनने से आती है। यह प्रभु की आवाज है जो मन और हृदय के आंतरिक अभयारण्य में गूंजती है। वेटिकन में 21 और 22 मार्च को बच्चों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिम और अवसर शीर्षक से एक सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। इसका आयोजन विश्व बाल्यवस्था न्यास और परम धर्म पीठे ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय के सहयोग से पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा किया जा रहा है। परम धर्म पीठी प्रेस द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गुरुवार 20 मार्च को प्रकाशित किया गया कि नैतिक दृष्टिकोण से सरकारी नियमों को मजबूत बनाना तथा बच्चों की सुरक्षा, गोपनीयता और गरिमा को केंद्र में रखना सम्मेलन का उद्देश्य है। विज्ञान संबंधी परम धर्म पीठी अकादमी के अध्यक्ष कार्डिनल पीटर टर्कसन के नेतृत्व में आयोजित प्रेस सम्मेलन में अनेक वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। कार्डिनल टर्कसन ने परियोजना की सामूहिक प्रकृति और नई तकनीकियों में परम धर्म पीठ की रुचि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एल्गोरिदम की नई नैतिकता और कथित एल्गोरिदमिक्स पर चर्चा से परे यह सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग देशों की जिम्मेदारियों पर बहस करना आवश्यक है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरी तरह से निजी हाथों में न रहे। जबकि प्रोफेसर फॉन ब्राउन ने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिम वैज्ञानिक समुदाय के लिए तेजी से स्पष्ट हो रहे हैं। इनमें सोशल मीडिया की लत भी शामिल है जो बच्चों के मस्तिष्क विकास को काफी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से गोपनीयता का उल्लंघन और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बच्चों की प्राथमिकताओं में हेरफेर भी शामिल है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वेटिकन की पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस रचनात्मक चर्चा को सुविधाजनक बना सकती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तकनीकी कंपनियों के साथ वार्ताओं की नितांत आवश्यकता होगी। इसी बीच विश्व बाल्यवस्था न्यास की ब्रिटा होमबर्ग्स ने संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को उद्धृत कर कहा कि नए उपकरण जोखिम और अवसर दोनों प्रस्तुत करते हैं। जॉर्डन में सन 2000 में संपन्न संत जॉन पॉल द्वितीय की पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा की रजत जयंती मनाई गई। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जेरूसलम के लैटिन पेट्रियार्केट के जॉर्डेनियन पुरोहित फादर रिफत बदर ने उस तीर्थ यात्रा और उसकी विरासत को याद किया। फादर रिफ बदर ने कहा कि सन 2000 में संत जॉन पॉल द्वितीय की जॉर्डन प्रेरित की यात्रा की स्मृति अभी भी उनके दिलों में तरोताजा है। उन्होंने बताया कि वे उस समय स्थानीय कैथोलिक कलीसिया के प्रवक्ता के रूप में काम करते थे और उन्होंने महान जयंती वर्ष के महान संत पापा की यात्रा के विशाल महत्व को महसूस किया था। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के उपलक्ष्य में हमने 20 और 21 मार्च को समारोह आयोजित किए हैं क्योंकि वह यात्रा ऐतिहासिक और एक पवित्र यात्रा से कम नहीं थी। वैटिकन पब्लिशिंग हाउस लेव ने पोंटिफिकल ईयर बुक 2025 और अनुवारियम स्टैटिस्टिकुम इक्लेजिया 2023 प्रकाशित किया है। पोंटिफिकल ईयर बुक में 2024 के लिए प्रकाशित आंकड़े संपूर्ण विश्व में कैथोलिक कलीसिया के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। 2024 में एक कलीसियाई प्रांत बनाया गया था, 3 धर्म प्रांतों को महाधर्म प्रांतों के रूप में पदोन्नत किया गया था, 7 नए धर्म प्रांत स्थापित किए गए थे, 1 धर्म प्रांत को महाधर्म प्रांत में पदोन्नत किया गया था तथा 1 प्रेरितिक प्रशासन को धर्म प्रांत में पदोन्नत किया गया था। विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया की नवीन अनुवारियम स्टैटिस्टिकुम इक्लेजिया में 2022 और 23 की द्विवार्षिक सांख्यिकीय अंतर्दृष्टि भी शामिल है। अफ्रीका में संपूर्ण विश्व के 20% कैथोलिक रहते हैं, जहां कैथोलिकों की संख्या 2022 में 27.2 करोड़ से बढ़कर 2023 में 28.1 करोड़ हो गई। अमरीकी महाद्वीप कैथोलिकों की संख्या में पहले स्थान पर बना हुआ है, जहां 47.8% विश्व के कैथोलिक जीवन यापन करते हैं। इनमें 27.4% कैथोलिक दक्षिण अमरीका के निवासी हैं। एशियाई महाद्वीप में 2022-23 के दौरान 0.6% की वृद्धि देखी गई और बताया गया कि विश्व की 11% कैथोलिक जनता एशियाई देशों में निवास करती है। यूरोप में विश्व जनसंख्या का 20.4% कैथोलिकों का है। उक्त 2 वर्षों में जहां मात्र 0.2% की ही वृद्धि हुई और ओशियाना में कैथोलिकों की संख्या 1.1 करोड़ रही। 2023 के अंत में कैथोलिक पुरोहितों की संख्या 40,06,996 रही, जो 2022 की तुलना में 734 कम थी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।